Hello, and welcome to Days of Our Lives, Mint's audio history series on liberalization and the ordinary man. Here, you will hear stories of how life changed for most people, be it the Sunshine Boy or the CEO following the reforms of 1991 in their voices.
Picture a bus, a public transport bus, please. It's perhaps standing on the side of the road, idling perhaps with the engine running. Throw in a few tired trees around it also, and even more tired-looking people. You could fill in the remaining details depending on your mood. But when we think of a public transport bus, it's almost always on a hot sunny afternoon, the kind where the heat actually throws up road mirages. Now zoom in a little on the bus. Go on, do it. Focus just in front of the door at the back of the bus. Yes, that one. See that man sitting there? On the last seat on the left? Yes, the one with his hand outside, perhaps hanging loosely by the side of the bus. Yes, him. You can't see him, but he probably has a khaki-coloured bag by his side and a sheaf of tickets in one hand. The bus conductor is perhaps one of the more permanent fixtures of the Indian roads. Apart from the autowala and the rickshaw puller, it is he who interacts the most with ordinary people on a daily basis. It is he who has a window seat view of the changing social, economic, and cultural landscape of a city through its roads. Today, we bring you the story of one such bus conductor, Ashok Kumar, an employee of the Delhi Transport Corporation, the main public transport operator of Delhi. Kumar has been a DTC employee since 1985. From the era of the Blue Line to the emergence of the metro to today's Uber and Ola-driven public transport sector, this is a man who has seen it all.
My name is Ashok Kumar. My age is 53 years and I am 31 years in DTC. I am working as a conductor. When I was in DTC, I was 22 years old. Aligarh district, Aligarh, from that, 13 kilometers away, there was a powerhouse. We were doing my father's service. There was no big service, but it was as a cleaner. About tanka aisi thi koi 500-600 rupaye us samay. Agar zamana wo yaad aa jata hai na to mere rooh kaapti hai us samay dekh ke. Ye dekho kya tha. Humne bina sweater ke jaade guzare hain apne gaon mein. Meri sister badi thi. Ab sister ki bhi shaadi karni thi. Phir shaadi ke baad hum Delhi aa gaye.
Wahan kyun nahi rahe aap Aligarh mein koi kaam kar lete agar kaam karna jaldi bhi padta lekin Aligarh mein nahi kar sake.
Aligarh mein itna kuch aisa nahi tha jisse hum kaam kar sake. Uske baad phir hum Delhi aa gaye. दिल्ली जॉब ढूंढने के लिए मैंने यहाँ के कई जगह फॉर्म भरे थे. एक आपके एयर इंडिया में भरा था, बैंकिंग में भरा था.
It was a straightforward enough job in a straightforward enough world. Looking at the past while wearing rose-colored glasses is a common enough indulgence for all of us. The 80s, according to him, were a decade when children respected their elders, buses ran on time, and people were polite.
उस समय बहुत ही अच्छा था. सड़कें खुली हुई थी एकदम. इतनी पब्लिक भी नहीं थी. पब्लिक के पास इतना वाहन नहीं था जो आजकल आप देख रहे हो ना, गाड़ियाँ कितनी हैं. जैसा आजकल तो बच्चे स्कूल के अब पता नहीं क्या समझते हैं और चढ़ जाते हैं, कनेक्टर को धमकी देते हैं कि मारेंगे तुझे, ये करेंगे. पहले ऐसा नहीं था. पहले अगर कनेक्टर कहते आए अभी नहीं तो पहले सवारी चढ़ेंगी उसके बाद चढ़ेंगे. पास सबके पास होता था. पहले ऐसे नहीं कि थ्री व्हीलर में लड़के आ रही हैं उसमें, नहीं बस का ही इंतजार करते थे वो लोग. उन्हें मालूम बस उस करेक्ट टाइम पर जाएगी. टाइम से चलती थी गाड़ियाँ पहले हमारे यहाँ.
टिकट्स का क्या प्राइस होती थी उन्हें?
मेरे ज़माने में 30 पैसे 40 पैसे टिकट हुई. मतलब जो 40 पैसे वाली टिकट थी ना, 40 पैसे वाली, वो पूरा होती थी जहाँ तक आपको जाना.
Uber, Ola, Metro, Carpooling. Today there are as many models of transport as there are people. But there was a time when DTC alone ruled the roost. Sure, there were a few personal vehicles and a couple of taxis. There were plenty of scooters, of course, from Bajaj to Vespa to Lambretta, but the bus ruled supreme. People had set routes and set travelling companion. It was a time when, as Kumar tells us, a personal vehicle was a sign of either immense personal wealth or a very senior position.
अपने काम में बहुत फर्क लग रहा है आपको अब?
पहले तो यही था कि हमें इतनी रुचि होती थी कि हम कभी ये कहे ना कोई कि आप ऐसा करो यहाँ प्रेजेंट रेस्टोर पे बैठ जाओ इसको, नहीं भाई हम बाहर ही जाएंगे. रोजाना के वही पैसेंजर होते थे कि उस ट्रिप में वो आएंगे, उस ट्रिप में वो आएंगे, ऐसे रहते थे. एक भाईचारे की तरह मुलाकात होती थी उनसे. आप जैसे बच्ची मिलती थी स्कूल पे, अंकल जी हम यहीं मिलेंगे कि बस लेके मत जाना, तो चाहे हमें 2 मिनट हो जाओ खड़े हुए, लेकिन छुट्टी हो रही है भाई, रोक लो 2 मिनट, बच्चों की छुट्टी, अपने आराम से घर पहुँच जाएंगे। तो हमें उनकी चिंता ज़्यादा रहती थी कि हमारा पैसेंजर कहीं रह ना जाए। अब जैसा नहीं है कि अब तो बस आ रही है या लेट आ रही है, कोई कौन किसकी परवाह कर रहा है।
और बस में उन दिनों कौन लोग होते थे जो आते जाते थे?
जो ये वकील साहब हैं, ये मैनेजर, अधिकतर मैनेजर, बैंक मैनेजर, किसी ऑफिस मैनेजर हैं, वो भी बताते वो हमें कि जी मैं उस ऑफिस में हूँ, कभी कोई काम पड़ा तो आना, क्या है किस पोस्ट में जी, मैनेजर हूँ मैं उसमें। आजकल तो कोई मैनेजर मेरा अंदाजे बिना गाड़ी के चलता ही नहीं। अब तो देखो बस भी आप जानते हो कैसी हैं, बिल्कुल सही गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप लोगों के पास ना अपना वाहन बहुत है, कोई बस का वेट नहीं करता। अब तो अगर यानी या तो ये समझो पैसा आ गया बहुत, आदमी के पास समय नहीं है, सिर्फ पैसा है। अब कैसे हमारी रोजाना उनसे मुलाकात होगी, नहीं ना कोई वेट करता।
क्या लगता था जो आदमी बस में नहीं चढ़ता जिसकी अपनी गाड़ी हो, तो वो आपके हिसाब से क्या
वही लगता था कि या तो मतलब ये काफ़ी बड़ी पोस्ट पर, या कोई मतलब बिजनेसमैन, या किसी ने अगर अफसर नहीं पर्सनल लिया तो बहुत बड़ा अफसर होगा। अब तो एक मैं भी खरीद सकता हूँ गाड़ी, क्योंकि इस पर लोन इतना चल गया है, कुछ पैसे दो सारा लोन करा दो गाड़ी आ जाएगी।
According to the 2001 census, 309 million people in India are internal migrants. Economic reforms have contributed to this, as they have to the increasing number of vehicles on India's roads. Delhi and NCR alone account for 7% of all national car sales. Kumar is not alone in remembering Delhi's empty streets. Till even a decade and a half ago, it was possible to get around the city without aging 10 years in the process. Today, if you drive during peak hours, you will hear hourly updates on the radio about congestion in every part of the city. Your Google Map routes are invariably an angry shade of red, and an empty expanse of road is all but a distant dream.
अब देख रहे हो आप जाम डेली, सुबह 9 बजे जरूर जाम होगा जमुना पार में, शाम को 6 बजे जरूर जाम होगा। तो आदमी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है। 85 में जब मेरी भर्ती हुई तो बिल्कुल कोई जाम नहीं, बड़े आराम से जाती थी गाड़ी, क्यों वाहन इतना नहीं था, पब्लिक इतनी नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ आज तो डबल मतलब 4 लाइन भी हैं, 8 लाइन भी हैं, लेकिन पहले तो एक ही लाइन होती थी। सामने देख रहे हो ना, सामने जो आईपी के सामने रोड है, ये भी सिंगल थी, ये पुल भी नहीं था, ये जो बना हुआ है आईटीओ पर, लेकिन फिर भी कोई जाम नहीं होता था। पहले रिक्शा होते थे, तांगे होते थे, वो जमुना पुल में ही चलते थे, थ्री व्हीलर भी एक आध तो खड़ा होता था स्टैंड पर कभी कभी वो भी।
मेट्रो के आने से पहले जो मेट्रो की सवारियां हैं, मतलब लगभग 12 मिलियन लोग बसों में ही जाते थे, तो आपको उससे मतलब आपको लगा आपके काम पे कोई फर्क पड़ा?
नहीं, काम पे तो यूँ फर्क नहीं पड़ा ना, जितना मेट्रो गई है मान लो कि उतनी ही जनता बढ़ी है दिल्ली के अंदर।
Being a bus conductor means having a ringside view literally of changing social reality. Here Ashok Kumar tells us not just about changing passenger attitude, but also how women first made a foray into public sphere. And what was earlier a rare occasion, a woman using public transport, became such a regular feature that DTC introduced a woman's only fleet. Today, the DTC also employs women conductors and drivers.
थोड़ा सा आप बात कर रहे थे कि मतलब हम पैसेंजर्स की बात कर रहे थे, आप उनमें रूल्स का ज्यादा ये था कि रूल फॉलो करेंगे?
इधर आप जमुना पार, क्यों मैं हसनपुर डिपो में था, आजकल हसनपुर डिपो नाम है उसका, पहले कटपुरानी डिपो हुआ करता था, तो जगह जगह टर्मिनल्स यहाँ बने हुए हैं ना, वहाँ लोगों की लाइन लगती थी, एडवांसर होता था, बस वाकत लगती थी स्टैंड पर, एक लाइन से चल रही थी। अब तो ये नहीं बस आई तो आगे से चल रहे हैं पीछे से चल रहे हैं, अब वो कायदा नहीं रहा, पहले पिछले गेट से चढ़ता था पहले।
और औरतों की तरफ क्या होता था व्यवहार, मतलब लोगों का जो बाकी पैसेंजर्स थे?
पहले तो देखते ही उठ जाते थे कि बेटी आ गई या बहू आ गई, या अब नहीं है कि बहाना बना ले, मेरे शर्म दर्द हो रहा है, मैं बैठा हूँ जी, मैं बीमार हूँ जी, कॉलेज के बच्चे भी हैं, ऑफिस की लेडीज भी हैं, अब तो काफ़ी ऑफिसों में लेडीज हो चुके हैं, अब तो लेडीज गाड़ी भी बनानी पड़ती है। अब मेरी लड़की की शादी के लिए मैं लड़का देखने जा रहा हूँ कहीं, तो कहीं जी कहाँ काम करती है, पहले ये कोई नहीं पूछता था, पहले सिर्फ बड़ों में बात चल गई, हाँ मेरी लड़की है, तेरा लड़का, ठीक है, इतना बदलाव तो आ ही गया।
Ashok Kumar in his introductory segment talks about how he still gets unsettled thinking about the abject poverty of his growing up years. A class 4 employee's salary in a Mofussil town in India doesn't go a long way even today. So just imagine how difficult was the situation 4 decades ago. Today money, while still a necessity, is not a scarcity. And as he points out, it's the same way for most people. He sums up the changing in spending attitudes in the line where he says, "Earlier people would ask for the price of a commodity and deliberate before buying. Today they simply just ask the shopkeeper to pack it." His children are all white-collar professionals. As he said to us during a chat, "A conductor's son will not be a conductor. Why am I working if that is the case?"
और आपने क्या चीजें बदलते देखी अपने इर्द-गिर्द?
तो वही का पैसा ज्यादा हो गया आदमी के पास. अब तो अगर कोई छोटा भी काम कर रहा है तो 10,000 रुपए तो है ये सैलरी.
ये पैसा कैसे आ गया हिंदुस्तान में आपके हिसाब से?
पहले हमारे यही गिने चुने ऑफिस हुआ करते थे. अब देखो लोगों ने कितनी फैक्ट्रियां हो गई. ऐसे धीरे धीरे पैसा बढ़ता गया इनके पास. ये लोगों के पास पैसा कोई चिंता ही नहीं. हाँ भाई ये इतने का है, चल ठीक है पैक कर दो. पहले लोग देखते थे उस चीज़ को, लेने से पहले उसको देखते थे, उसको जायजा लेते थे कि हाँ जी क्या है कैसे ये इतने पैसे क्यों ले रहा है इसके.
जब से आपने शुरू किया उस वक्त की सैलरी से अभी तक बहुत फ़र्क है. आपने बहुत तरक्की की है. आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही खुशहाल हो गई है. बहुत फ़र्क
नहीं. देखो शुरू में जब हम माँ बाप के पास थे तो हम बहुत ही हर चीज़ को मांगते भी नहीं थे हम माँ बाप से. क्यों हम जानते थे चीज़ में 500 रुपये में क्या होता है आदमी का. अब धीरे धीरे फिर हम यहाँ दिल्ली में आ गए. दिल्ली में आके हमने देखा कि हाँ अपने भी सपने कुछ होते हैं. वो धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ती गई. हाँ यही है कि अब देखो जैसे कि अब हम चाहते हैं या घर में कोई बच्चा ये कहे ना मेरे से कि आज पापा मुझे ये चीज़ लेनी है. जैसे बड़ी लड़की ने कहा पापा मुझे स्कूटी ला के दो. मैंने ठीक है बेटा दे देंगे. मैंने ठीक है. तो अब मैं ये सोचता हूँ कि देखो वो जितनी हमने गरीबाई देखी उस समय भगवान किसी को ना दिखाए.
बच्चे क्या करते हैं आपके?
बताए एक पढ़ रहा है अब लड़का है वो 11th पढ़ रहा है रामदास कॉलेज में. लड़की ने अभी मीडिया करा था उसके बाद उसने सर्विस भी करी थी. अब उसकी शादी होने वाली थी उसने छोड़ दी सर्विस.
दो बच्चे?
हाँ फिलहाल दो बच्चे हैं. बड़ी लड़की की शादी कर चुके हैं.
वो क्या करती थी?
वो MBA करा था उसने.
MBA मीडिया ये चीज़ें आपके ख्याल में थी जब आप यहाँ शुरू में थे? कभी सुना था सोचा बच्चे?
नहीं बिल्कुल भी नहीं. आज को मेरे पास कुछ है जब तो करा ना उन्होंने. अगर मेरे माँ बाप पास भी कुछ होता तो मैं भी पता नहीं क्या होता.
In 2007, McKinsey had come out with a report that it predicted rather ambitiously, as Indian incomes increase, over 291 million people will move from desperate poverty to a more sustainable life. The report had even said that India's middle class will eventually touch 500 plus million. Simpler times, huh? The actual figure of India's middle class still remains open to debate. But since liberalization 25 years ago, millions of people have successfully moved from lower than $5,000 annual income to higher levels, according to a recent article in The Mint. Ashok Kumar's views of a changing India are gathered from his changing interactions with not just the city, but also its people. He, like most blue-collar employees in India, has little to no idea about economic reforms, but is more than cognizant of the changes they have wrought. Interview conducted by Ishwak Masoodi. This podcast has been produced by Anik Biswas.